my very great pleasure and fortune to be with all of you again in this auspicious town of Belgaum.
ये मेरा सौभाग्य और आनंद की बात है आप सबके बीच में इस बेलगाम के शहर में आने की.
It is only by the very causeless mercy of our beloved Guru Maharaj, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we were given this chance to render whatever insignificant service we are capable of offering to you.
ये हमारे गुरु महाराज लैसी भक्तिदानंद स्वामी प्रभुपाद की अहित की कृपा से है कि हम जो भी कोई तुच्छ सेवा हम योग्य हैं वो आपको अर्पण कर पा रहे हैं.
In the path of bhakti, our only aspiration in life is to become the servant of the servant of the Lord's servants.
भक्ति के मार्ग में हमारी एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के दासों के दासों के दास बनना.
The desire for fame, prestige, or high position is the allurements of Maya.
मान प्रतिष्ठा और पदवी प्राप्त करने की इच्छा जो है वो माया का प्रलोभन है.
The pleasure of the senses is the path to death.
इंद्रिय तृप्ति का जो मार्ग है वो मृत्यु का मार्ग है.
The only thing sacred in all of creation is the opportunity to take the position of a humble servant of the Lord.
और एक ही चीज है जो कि जीवन में प्राप्त करने लायक है वो है कि दासों के दासों का दास बनना.
When the opportunity to serve comes into our life, we should consider we have received the greatest blessing.
जब हमें सेवा करने का अवसर मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है.
People ask for various blessings from the Lord.
भगवान से लोग अनेक प्रकार के आशीर्वाद मांगते हैं.
To achieve the things of this world.
जिससे दुनिया की चीजों को प्राप्त कर सकें.
Or perhaps to achieve liberation from the sufferings of this world.
या फिर इस दुनिया के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं.
But the highest prayer that we have learned from Sri Prahlad Maharaj and other great Mahajans is for the blessing of eternal service.
लेकिन सबसे बड़ी प्रार्थना जो हमने प्रहलाद महाराज भक्तों से सीखा है वो ये है कि अंतिम आश्रय प्राप्त करने की इच्छा करना.
श्री चैतन्य महाप्रभु has prayed, Nadananda Jananda Sundari Kavitam Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmanishwari Bhavata Bhakti Rahita Kitvai. I do not want any amount of wealth, nor do I want the association of beautiful women. I do not want fame, followers, or even liberation. My only desire is to be engaged in your loving service birth after birth after birth.
चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से प्रार्थना की है, मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं ये अभिलाषा करता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपकी सेवा में लगा रहूं.
To come to the platform of consciousness, wherein we can offer that prayer from the core of our heart, that should be the aspiration of our life.
हमारे जीवन की अभिलाषा ये होनी चाहिए कि उस स्तर पे पहुंचे चेतना के कि हम ये प्रार्थना को अपने हृदय से अर्पण कर सके.
Today we are especially blessed by a very glorious personality.
आज हम एक बहुत ही महान व्यक्तियों के संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं.
श्री विजयेंद्र शर्मा.
श्री विजयेंद्र शर्मा.
Who is the head of the Vidyabihar Vidyapith.
Vidyabihar Vidyapith के मुख्य हैं.
He has been a very well-wishing friend to our ISKCON movement for many years.
कई वर्षों से हमारे ISKCON के वो हितैषी रह चुके हैं.
And I am especially very grateful to him.
मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ.
And very much honored that he would come this evening.
मैं बहुत खुशी है कि वो आज यहाँ पर आए.
Please, everyone, welcome him by loudly chanting Hari Bol.
Hari Bol! Hari Bol! Hari
Bol! I have no right to be sitting in this higher position, but this is the only seat we have. Please forgive me. I am also a guest. The mood of service is the only quality that attracts Krishna.
सेवा की भावना है वही भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है.
Krishna is all attractive.
कृष्ण सर्व आकर्षक है.
He is Madan Mohan.
वे मदन मोहन हैं.
Cupid or Madonna.
By his flower arrows, he is keeping everyone within this entire universal creation captivated.
मदन जी अपने तीरों के द्वारा सबको इस दुनिया में बांध के रखे हुए हैं.
His attractions are irresistible.
उनके जो प्रलोभन है उनको रोका नहीं जा सकता.
But Krishna is Madan Mohan.
लेकिन कृष्णा मदन मोहन है.
His eternally beautiful spiritual qualities completely captivate the mind of Kamdev.
उनके जो नित्य गुण हैं वो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं.
But yet Krishna, he is attracted and captivated by the humble, loving service of his devotees.
लेकिन कृष्णा जो है वो अपने भक्तों की नम्र सेवा के द्वारा वो भी मोहित हो जाते हैं.
This is the greatest secret of all secrets within the Vedic literature.
सारे वैदिक शास्त्रों में तो रहस्य में सबसे बड़ा रहस्य यही है.
The absolute truth, who is the source of everything that exists, who is all powerful, creator, maintainer, and destroyer of everything, he is subordinate to the love of his devotee.
जो परम सत्य है, जो कि सृष्टि के रचयिता है और जो कि पालन करते और नाश करने वाले हैं, वही जो भक्तों के अधीन हो जाते हैं.
अहम् सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my loving service and worship me with all their hearts.
भगवान बताते हैं कि मैं ही सब भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ और जो बुद्धिमान नीति जानते हैं वो भक्ति भावना से मेरी आराधना करते हैं.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world in the dark age of Kali. To teach us by his own example how we can conquer Krishna through love and devotion.
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए हमें सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति के द्वारा हम भगवान कृष्ण को जीत सकते हैं.
The golden principle of Mahaprabhu's teachings is one particular verse found in his Shikshastra.
चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों की सुनहरी जो एक श्लोक है जो शिक्षास्त्र में पाया जाता है.
त्रिनादपि सुनिचेना तुरो इवाच्यहिष्मना Amanina manadena kiritriya sadhari. That one should feel oneself more humble than a blade of grass.
व्यक्ति को अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा नीचा मानना चाहिए.
More tolerant than a tree.
और पेड़ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए.
Ready to offer all respect to others.
दूसरों को मान देना चाहिए.
And expect no respect for oneself.
और स्वयं के लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए.
In this state of consciousness, one can constantly chant the holy names.
इस चेतना में व्यक्ति हर समय भगवान का नाम कीर्तन करता है.
When we call out the name in this state of mind, then we attract the heart of Krishna.
जब हम इस अवस्था में भगवान के नाम को पुकारते हैं तो उनके हृदय को आकर्षित करते हैं.
Krishna, who is non different than his name, manifests his full potencies to that person who chants with such humility and devotion.
जो व्यक्ति नम्रता और भक्ति से इस तरह से नाम जप करता है तो भगवान अपने शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं.
He is pavitra, all pure.
वे पवित्र हैं.
He cleanses the mirror of the mind.
वो हृदय के दर्पण को साफ करते हैं.
He removes the great dark cloud of anartas that have been eclipsing our real spiritual qualities since time immemorial.
वो सब अनर्थों को दूर करते हैं जो कि हमारे आध्यात्मिक गुणों को आवृत कर चुके हैं अनादि काल से.
He allows the pure eternal light of bhakti to shine within our heart of hearts.
वो भक्ति के प्रकाश को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं.
And then only can we taste the real bliss, the ecstatic love that we have been searching for birth after birth after birth.
और तभी फिर हम उस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं जो कि जन्म जन्मांतर से हम इसका खोज कर रहे हैं.
Most important is we have to develop the proper qualities of a genuine servant.
सबसे महत्वपूर्ण है कि एक सच्चे सेवक के गुण हमें विकसित करने हैं.
That means no ego.
इसका मतलब अभिमान नहीं होना.
No ulterior motives.
कोई दूसरे इरादे नहीं होना.
A simple heart with the substance of devotion.
एक सरल हृदय जो कि भक्ति से भरा हो.
That we should strive for, that we should pray for, that we should live for, and that we should die for.
उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए जीना चाहिए और उसी के लिए मरना चाहिए.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu displayed these qualities in his own life.
अपने स्वयं के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन गुणों को प्रकट किया.
And especially he revealed them and glorified them in his devotees.
और विशेषकर उन्होंने भक्तों में गुणों को दर्शाया और उनका गुणगान किया.
Sometimes on special occasions the Lord would manifest his original feature as Bhagavan Shri Krishna.
कभी कभी विशेष अवसर पर वो अपने भगवान श्री कृष्ण का रूप प्रकट करते.
And then at the next moment with straw between his teeth he would offer obeisances to all, begging to serve.
दूसरे क्षण अपने घाट का तिनका अपने मुंह में डालकर सबको प्रणाम करते और सेवा मांगते.
There was one devotee. His name was Srivas Pandit.
एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित.
He had two very special qualities.
उनके दो विशेष गुण थे.
And due to those qualities, he conquered the heart of the Lord.
और इसके कारण उसने भगवान के हृदय को जीत लिया.
Of course, he had pure unmotivated devotion.
उनके पास शुद्ध भक्ति तो थी.
But he had these two qualities, that he was very kind and very generous.
वो बहुत दयालु थे और बहुत उदार थे.
Because he was kind and generous toward all living beings, the Lord personally displayed his most confidential pastimes in Srivas Pandit's house.
क्योंकि वो बहुत दयालु थे और बहुत उदार थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला श्रीवास पंडित के घर में प्रकट की.
This took place in Navadvip.
ये नवद्वीप में हुआ था.
At that time, Navadvip was the high seat of learning in all of northern India.
उस समय सारे उत्तर भारत में नवद्वीप विद्या की राजधानी मानी जाती थी.
There were very, very great scholars who day and night studied Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other Vedic scriptures. Some would give lectures and attract thousands and thousands of people to hear their erudite scholarship. Others were great yogis and ascetics who performed such severe austerities that they practically starved their bodies.
और कुछ ऐसे योगी तपस्वी थे जिन्हें तपस्या करते कि अपने शरीर को बिल्कुल भूखा रखते.
But hardly a one understood what is Krishna and what is devotion.
लेकिन कोई बिरला ही था जो समझता कि कृष्ण कौन है और भक्ति क्या है.
Hardly one understood the ultimate object of all of their penance and learning was living right amongst them.
उनमें से कोई शायद समझ पाया कि सारे उनकी विद्या और तपस्या का उद्देश्य उनके बीच में रह रहे हैं.
Srivas Pandit was a simple grihastha.
Srivas Pandit एक सरल गृहस्थ थे.
Murari Gupta was a doctor.
Murari Gupta एक वैद्य थे.
Of Ayurvedic medicine.
Ayurvedic वैद्य.
Yet they and their wives and their servants and maidservants, friends and family members, they could all understand in full the essence of life, pure love of God.
परंतु ये और उनके पत्नी, इनके दास, इनके दासी और मित्र, ये सब जो है जीवन का लक्ष्य समझ सकते थे.
Because they had the quality of humility and the desire to serve.
क्योंकि उनके नम्रता और सेवा की भावना थी.
Which is ultimately the conclusion of all scriptures.
जो कि अंततः सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है.
सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकां शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सजा. Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from all sinful reactions. Have no fear.
भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम भय मत करो.
I would like to relate to you, with your permission, one very mysterious but instructive leela that took place in Srivas Thakur's house.
आपकी आज्ञा से मैं एक लीला बताना चाहूंगा जो कि बहुत गुह्य है, जो कि श्रीवास ठाकुर के घर में घटी थी.
It took place during the time of the Satprahariya Bhava or the Mahaprakash, where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, in a very unique mood, was revealing himself as the Supreme Absolute Truth just according to each particular devotee's devotion.
ये सत्प्रहरीय लीला या महाप्रकाश लीला जो है उसमें बहुत ही हुई, जबकि जब चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को उनके भक्ति के अनुसार प्रकट हो रहे थे.
He was revealing the particular incarnation that was the object of worship of each devotee's heart.
वो उसी विशेष अवतार को प्रकट कर रहे थे जो उस भक्त के लिए आराध्य देव थे.
And he was giving the fulfillment of any boon that any devotee asked for.
और जो भी आशीर्वाद कोई भक्त मांगता उसकी वो इच्छा को पूरी कर रहे थे.
During these 21 hours, the Lord asked everyone, ask any benediction, I will fulfill it.
इन 21 घंटों के दौरान उन्होंने हर एक भक्त से पूछा, आप कुछ भी आशीर्वाद मांगिए मैं पूरा करूंगा.
Advaita Acharya prayed,
I am a most wretched, fallen fool. Please have mercy on me.
अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की कि मैं बहुत पतित मूर्ख हूँ, कृपया मेरे ऊपर दया करिए।
Another devotee called out with a very sincere and devoted heart, "My father, he does not permit me to come here. Please make him favorable so I can come more often."
एक दूसरे ने प्रार्थना की कि मेरे पिता मुझे यहाँ पर सत्संग में आने नहीं देते, कृपया हमको अनुकूल बनाइए जिससे मैं आ सकूँ ज्यादा।
Another devotee prayed, "Please bless my disciples with love of Krishna."
दूसरे ने प्रार्थना की कि मेरे शिष्यों को कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद दीजिए।
And others prayed for the same benediction for their wives, their husbands, their children, their servants, their maid servants.
और दूसरों ने ऐसी आशीर्वाद की प्रार्थना की उनके पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दास के लिए और दासियों के लिए।
One devotee asked, "Please give me the benediction that I can have full faith and devotion in the service of my spiritual master."
एक अपने प्रार्थना की कि मुझे अपने मेरे गुरु की सेवा में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भावना हो।
All these benedictions were immediately fulfilled.
ये सब आशीर्वाद तुरंत पूर्ण हो गए।
While the Lord was fulfilling everyone's desire,
जब भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे थे,
there was one devotee, very humble and simple Vaishnava named Mukunda Dutt.
बहुत ही नम्र वैष्णव जिनका नाम था मुकुंद दत्त।
He was standing outside behind a curtain.
वो एक पर्दे के दूसरी ओर खड़े हुए थे।
He was so simple and humble that he felt, "I cannot come in and stand before the Lord unless the Lord calls for me. I am too fallen."
वो इतने सरल और नम्र थे कि वो सोच रहे थे कि मैं काबिल नहीं हूँ, जब तक भगवान मुझे बुलाते नहीं हैं तो उनके सामने नहीं जा सकता।
The Lord was just giving such extraordinary mercy to everyone, but he never looked upon or called upon Mukunda.
भगवान सबको विशेष कृपा दे रहे थे लेकिन मुकुंद को उनको बुलाया न उनकी और दृष्टि डाली।
He felt utterly rejected.
उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं तिरस्कृत हो गया हूँ।
He was weeping and crying.
वो रो रहे थे।
Seeing the lamentation of Mukunda, all the devotees began to weep.
उनके दुख को देखकर सारे भक्त रोने लगे।
What is the nature of a Vaishnava?
एक वैष्णव का क्या स्वभाव होता है?
A Vaishnav wants to see every other devotee get the mercy of the Lord.
वो चाहते हैं कि हर एक दूसरे वैष्णव को भगवान की कृपा मिले।
What is the nature of someone who is avaishnava?
और अवैष्णव का स्वभाव क्या है?
He wants to get special mercy himself and somehow or other prevent others from getting that mercy.
वो चाहता है कि उसको विशेष कृपा मिले और चाहता है कि दूसरों को ऐसे नहीं मिले, तो रोकना चाहता है।
He wants to come up and get special recognition and somehow or other keep everyone a little below him.
वो चाहता है कि वो स्वयं ऊपर आए और बाकी सबको में से अधीन रखे।
That is material tendency.
ये भौतिक प्रवृत्ति है।
But a real devotee wants to see every other devotee get the special mercy of the Lord. And when they see that, they become overjoyed.
एक सच्चा भक्त चाहता है कि दूसरे को ज्यादा कृपा मिले और जब वो देखता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है।
Everyone there was getting all their desires fulfilled. Everyone was getting such special recognition and such personal mercy of Lord Chaitanya, but they were all crying and weeping because Mukunda was not getting.
हर एक व्यक्ति को वहाँ पर विशेष कृपा मिल रही थी लेकिन वो दुख प्रकट कर रहे थे क्योंकि मुकुंद को ऐसी कृपा नहीं मिल रही थी।
When we all start to think of how other devotees could get the Lord's mercy in this spirit, then we live in Vaikuntha.
अगर हम इस भावना में कैसे दूसरे भक्तों को भगवान की कृपा मिले तब हम वैकुंठ में रह रहे हैं।
As long as we're competing, we're living in the material world.
जब तक हमारे अंदर स्पर्धा की भावना है हम इस भौतिक दुनिया में।
Srivas Pandit approached Lord Chaitanya with folded palms.
Srivas Pandit Chaitanya Mahaprabhu ke paas haath jod kar pahunche.
"My Lord," he said, "you are the master of countless universes.
Ve kehne lage aap to asankhya brahmand ke swami ho.
You know everyone's heart.
Aap sabke hriday ko jante ho.
Mukunda Dutt is outside hiding behind a curtain because you have not called him.
मुकुंद दत्त बाहर हैं पर्दे के पीछे छिप रहे हैं क्योंकि आपने उनको बुलाया नहीं है।
He has wholesale surrendered his life at your lotus feet.
उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जीवन जो आपके चरण कमलों में अर्पण किया है।
When he sings kirtan, everyone's hearts melt in love.
जब वो कीर्तन गाते हैं तब सबका हृदय जो है प्रेम से पिघल जाता है।
He is very, very dear to you.
वे आपको अतिशय प्रिय हैं।
And to us, the circle of devotees, he is our life and soul.
और हम सब भक्तों के लिए भी हमारे प्राण धन हैं।
What offense did he commit that you are rejecting him?
उसने क्या अपराध किया है जिससे आप उसको तिरस्कृत कर रहे हैं?
If he has made some mistake, then punish him, but do not
reject him as your servant, he will not even come in without your permission. We beg you, my Lord, please grant him permission to come to see you.
आपके आज्ञा के बिना वो आएगा ही नहीं. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आज्ञा दें अंदर आने के लिए.
The Lord is inconceivable.
भगवान अचिंत्य हैं.
He can fulfill so many purposes through any one word or action.
एक शब्द या कार्य के द्वारा वो अनेक उद्देश्य पूरे कर सकते हैं.
In this particular instant, the Lord wanted to glorify his devotee in a very special way and teach the world many lessons.
इस घटना के द्वारा अपना गुणगान करना चाहते थे और पूरे विश्व को कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते थे.
When he heard Srivas's appeal, the Lord replied,
शिवाज के निवेदन को सुनकर भगवान ने जवाब दिया,
Do not, never, never speak like that to me again.
वे कहने लगे, फिर कभी मेरे को इस तरह से मत कहना.
Mukunda is a foolish, wretched rascal. Do not appeal to me on his behalf.
मुकुंदा जो एक मूर्ख हैं, मेरे को उनके लिए निवेदन मत करना.
Mukunda, he does what you have heard of. Sometimes he puts a blade of grass between his teeth, and then at other times he takes up an iron club.
कभी कभी वो अपने दांतों से सिक्का धारण करते हैं और कभी कभी वो लोहे की गदा धारण करते हैं हाथ में.
This example applies to him. You do not know the secrets of his history.
ये उदाहरण उनके लिए है. आप उनके रहस्य को नहीं जानते.
When he's with devotees, he places grass between his teeth, very humble.
जब वो भक्तों के बीच में होते हैं, तो अपने दांतों को भी तिनका रख के बड़े नम्र रहते हैं.
But then he attacks me with our iron mace.
लेकिन फिर लोहे की गदा लेकर वो मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं.
He makes no discrimination who he associates with.
वो इस तरह से जो है भेदभाव नहीं करते किसका संग कर रहे हैं.
When he's with devotees, with grass between his teeth, he's dancing and chanting.
जब भक्तों के संग होते हैं तो घास का तिनका दांतों के बीच रखकर वो कीर्तन और नृत्य कर रहे होते हैं.
And then he mixes with impersonalist philosophers.
और बाद में निर्विशेष वाले दार्शनिकों के बीच में रहते हैं.
And there he goes along with what they speak.
और जैसा जो बोलते हैं वैसा ही वो बोलते हैं.
They attack the body, the form, the leela and the name of the Lord.
भगवान के रूप और शरीर और लीला पर आक्रमण करते हैं.
By speaking with these people, by associating with these people, he is hitting my body with a mace.
उन लोगों का संग करने से, उनके साथ बातचीत करने से वो मेरे शरीर पर गदा से प्रहार कर रहे हैं.
The Vaishnavas understand that Krishna's body is Sachidananda Vigraha.
वैष्णव जानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है.
Lord Narayan is eternal, full of knowledge and full of bliss.
भगवान नारायण का रूप शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण है.
Lord Brahma prayed. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadira Dira Govinda Saravakarana Karanam. Krishna's body is eternal, full of knowledge and full of transcendental ecstasy. He is the cause of all causes. He is the origin of everything that exists and the supreme goal of life.
Krishna jo hai unka roop sat arthat shashwat aur gyan se purna aur anand hai aur ve sab karanon ke karan hai aur ve anadi hai.
His pastimes are the eternal manifestation of the activities of the spiritual world.
Unki lila jo hai adhyatmik jeevan ke karyakalapon ka prakat swarup hai.
His name is transcendent.
Unka naam jo hai divya hai.
And the ultimate perfection of life is to be his eternal servant, jivara swarupoi krishna ranity das.
Aur jeevan ki purnata hai unka shashwat sevak hona.
But those who say that the Lord's body is just a temporary manifestation of maya, his name is only a temporary manifestation of maya, his pastimes are only a temporary manifestation of maya, and these temporary manifestations are in the mode of goodness, and by concentrating your mind on them you become purified, and ultimately there's no more need for the form, the pastimes, the name, the qualities of the Lord, because you become God, the impersonal all-pervading existence.
लेकिन ये लोग इस तरह से बताते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, ये सब जो है ये भी माया है, और इस पर ध्यान करने से अंततः जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती.
Those who deny the eternal blissful nature of my form, my pastimes and my qualities are beating me with an iron mace, and this Mukunda has done.
जो मेरे नाम, रूप, लीला की शाश्वतता को नहीं स्वीकार करते वो मेरे को इस गदा से प्रहार कर रहे हैं, और मुकुंद ने इस तरीके से किया है.
When Srivas heard this and the devotees, they were terrified in their hearts. They were weeping and crying. Srivas appealed, "My Lord, Mukunda is your eternal servant. He's of perfect behavior. He's very strict on the path of devotion. He's kind and respectable to everyone. He's faultless. We see no faults in him." When Lord Chaitanya, he explained how unless one has pure unalloyed devotion, they cannot see him.
Chaitanya Mahaprabhu bataya ki jab tak kisi ke andar shuddh bhakti nahi hai tab tak unko nahi dekh sakte.
Mukunda Das was weeping.
Mukunda Das ro rahe the.
In his heart, he was thinking that I have no reason to live.
Apne hriday mein woh soch rahe the ki mere ab jeene ka koi uddeshy nahi hai.
If I have offended the Lord, then let my body die immediately.
अगर मैंने भगवान का अपराध किया तो मेरा शरीर अभी नष्ट हो जाए.
Then he called out, "O Srivas, please ask the Lord if I will ever be able to see you."
फिर वो कहने लगे, श्रीवास भगवान से पूछिए क्या कभी भी मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा.
The Lord said, "I will not let that rascal see me."
भगवान ने जवाब दिया कि मैं इस मूर्ख को मेरा दर्शन नहीं दूंगा.
Srivas cried out, and all the devotees were crying, "Will I ever be able to see the Lord again?"
Srivas pukarne lage, "Kya main fir se kabhi bhi bhagwan ka darshan kar paunga?"
Lord Chaitanya said, "After 10 million births he will see me. Of this there is no doubt."
Tab unhone bataya ki 100 lakh janam ke baad unko mere darshan honge, isme koi shak nahi.
When Mukunda heard that after only 10 million births he will see the Lord, he became ecstatic.
जब मुकुंद ने सुना कि 100 लाख जन्म के बाद दर्शन होंगे तो बड़े प्रसन्न आनंदित हो गए.
He was splashed with bliss.
वो आनंद से विहल हो उठे.
He began to dance in ecstasy.
वो आनंद से नृत्य करने लगे.
Weeping and crying.
उनके आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगे.
Loudly calling out, I will see, in only 10 million births, I will see the Lord, I will see, he has promised.
और वो जोर से पुकारने लगे कि मुझे दर्शन होंगे, मुझे दर्शन होंगे. सिर्फ 100 लाख जन्म के बाद भगवान ने वचन दिया कि मुझे उनके दर्शन होंगे.
With this hope in his heart, he was so ecstatic, he completely forgot all the material environment around him.
वो इस आशा से इतने प्रसन्न हो गए कि वो सारे भौतिक वातावरण को भूल गए पास में.
Dancing and dancing and chanting and chanting, he kept saying, "I will see, I will see."
वो नृत्य करते हुए गाते हुए कहने लगे कि मैं दर्शन करूंगा, मैं दर्शन कर पाऊंगा.
Lord Chaitanya saw this and began to laugh.
श्री चैतन्य महाप्रभु ये देखकर हंसने लगे.
He said, "Bring Mukunda immediately before me."
उन्होंने कहा, मुकुंद को तुरंत मेरे सामने ले आइए.
The devotees all called out, "Bring Mukunda, bring Mukunda."
और सब भक्त पुकारने लगे, मुकुंद को यहाँ ले आओ, उनको यहाँ ले आओ.
They came to get Mukunda, said, "Mukunda, Lord Chaitanya is calling for you now." But he was so absorbed in the ecstasy of the trance of thinking in 10 million births, he didn't hear anyone. He was just dancing and dancing. The devotees were saying, "Mukunda, come now, now." He couldn't hear them. Lord Chaitanya personally called out to Mukunda that because of your humility, because of your patience, because of the intensity of your gratitude, that you're so happy to see me after 10 million births, I am calling you to come and see me right now.
सब्र और कृतज्ञता के लिए प्रसन्न होकर मैं आपको अभी इसी समय यहाँ बुला रहा हूँ.
But Mukunda was so much in the trance of chanting and dancing, saying, "I will see after 10 million births," he couldn't even hear Lord Chaitanya.
श्री चैतन्य महाप्रभु की बात को सुन ही नहीं पाए थे, इतने ज्यादा वो आनंदित थे सोचकर कि 10 लाख जन्म बाद में दर्शन होंगे.
Finally, Gauranga Mahaprabhu said to his devotees, "Bring him here."
गौरंग महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि उनको तुरंत यहाँ ले आओ.
The devotees literally picked him up and carried him to where Lord Chaitanya was.
He was still crying out, I will see 10 million births, I will see, there's no doubt. He placed him right at Lord Chaitanya's feet.
When he saw the beautiful golden form of Sri Gaurasundar, he fell with great humility and love and surrendered at his lotus feet. Gauranga Mahaprabhu said to him, Mukunda Dutt, you are my beloved devotee. You are the very personification of devotion. Actually, you never made any offenses. And even if you make so many millions of offenses, because you're so dear to me, they're not even offenses. But when I said, after 10 million births you saw, you will see me, and I saw how you responded with such patience, with such gratitude, you conquered my heart. Because you had firm faith in my words, I am an eternal prisoner in your heart. This is an important lesson. If we have firm faith in the words of Krishna, in the words of the sadhus, in the words of the Shastra, Krishna becomes an eternal prisoner within our hearts. Of course, a devotee never wants Krishna to be prisoner. A devotee wants to be Krishna's prisoner. But this is reciprocation of love.
ये प्रेम का आदान प्रदान है।
ये यतामं प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ति मनुष्यपरतः सर्वशा। As we approach Krishna, he reciprocates accordingly.
हम जिस भावना से कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कृष्ण भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं।
We want to be the prisoners of Krishna's will.
हम कृष्ण की इच्छा के कैदी बनना चाहते हैं।
And when we have that bhava, Krishna becomes prisoner within our hearts. Mukunda Dutt, he was so aware of the glorious benediction of pure devotion to the Lord. To be able to have the darshan of Bhagavan is such an exalted position.
भगवान का साक्षात दर्शन होना ये इतना उच्च स्तर का आशीर्वाद है।
That when he was told that he would get this darshan in 10 million births, he was so gratefully satisfied. I don't deserve this.
जब उनको बताया गया कि 1 करोड़ जन्म के बाद आपको ये दर्शन होंगे, तो बहुत प्रसन्न हुए।
That is patience.
इसको बोलते हैं सफलता।
Some of us have been chanting the holy names and doing some service for maybe 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, and sometimes we start thinking, why am I not seeing God?
कभी कभी हम जैसे कोई 5 साल, 10 साल या 25-30 साल तक भगवान का नाम जब करते हैं और सोचते हैं कि अभी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे?
What's the problem with this Krishna?
ये कृष्ण के साथ क्या गड़बड़ है?
Doesn't he see all I've done and all that I'm doing and all I'm willing to do?
क्या वो देख नहीं रहे मैं कितना किया है और कितना मैं कर रहा हूँ और कितना करने के लिए तैयार हूँ?
All the preparations I've offered to the deities, all the lectures I've given, all the names I've chanted, all the tapasyas I've performed.
मैंने इतना भगवान को भोग अर्पण किया, इतना जप किया, इतने प्रवचन दिए, इतनी तपस्या किया.
Doesn't he see how humble I am?
और देख नहीं रहे मैं कितना नम्र हूँ?
Why I'm not seeing him?
क्यों मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे?
Why he's not dancing in my dreams? Why I'm not just bursting in ecstatic love at his darshan everywhere? When we have the consciousness of Mukunda Dutt, then Krishna will show himself to us. When we understand Krishna is so exalted and his darshan is so transcendentally rare that we are content if it takes 10 million births of chanting our japa every day, performing kirtan, performing tapasya, offering everything of our lives to him, if we could just do that, and after only 10 million births we see God, what a benediction.
जब हमारी ये चेतना होगी कि मैं जितना भी सेवा कर रहा हूँ, जितना भी तपस्या कर रहा हूँ और 10 लाख जन्म बाद भी अगर दर्शन हो तो महान है, तब हमें इसकी काबिलता होगी.
When your heart is so grateful, then you will see Krishna.
जब आपका हृदय इस कृतज्ञता की भावना से भरा है तब आप कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे.
Lord Chaitanya said to Mukunda Dutt that you are the very personification of devotion.
Chaitanya Mahaprabhu ne Mukunda se kaha, aap bhakti ke murtiman swarup ho.
Mukunda Dutt, his heart was melted in humility.
Mukunda Dutt ka hriday namrata se pighla hua tha.
He began to weep.
Unke aankhon se aashru prabah hone laga.
And offer beautiful prayers.
Aur sundar prarthnaye arpan karne lage.
Please listen to these prayers.
In prarthnaon ko suniye kripya.
If you hear them carefully, there's a benediction.
Agar aapne dhyan purvak sunte hain to ek aashirwad prapt hota hai.
If you hear these prayers attentively and sincerely, then very soon you will be singing in kirtan with Mukunda Dutt.
Agar aap unko dhyan se sunte hain to aap Mukunda Dutt ke kirtan mein ga sakenge.
He prayed to the Lord. I am the most sinful.
भगवान से कहने लगे कि मैं सबसे पापी हूँ.
The most fallen.
सबसे पतित.
I have no good qualities.
मेरे अंदर कोई सद्गुण नहीं.
My life is as useless as a pile of ashes.
मेरा जीवन जो है राख के ढेर के समान बेकार है.
For I have no devotion.
मेरे अंदर कोई भक्ति भावना नहीं.
But still, by your causeless mercy, when I see you, I'm feeling transcendental bliss in my heart.
लेकिन फिर भी जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव होता है.
How is this possible?
ये कैसे संभव है?
I have no devotion.
मेरे अंदर कोई भक्ति भावना नहीं है.
Duryodhana. He was given darshan with his own eyes of the universal form, the Virat Roop.
दुर्योधन को अपनी आंखों से सामने आपके विराट स्वरूप के दर्शन हुए.
Great sages, yogis, and even the gods cannot see this form.
बड़े बड़े संत और ऋषि और देवता भी इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते.
He saw the Virat Roop. You manifested it before him.
उसने विराट स्वरूप को देखा जो आपने उसके सामने प्रकट किया.
But yet he and all of his family member perished.
लेकिन उसके और उसके सारे परिवार के सदस्य का नाश हो गया.
He derived no happiness seeing this.
ये सब देखकर उसे कोई आनंद का अनुभव नहीं हुआ.
Because he had no love and devotion.
क्योंकि उसके अंदर भक्ति और प्रेम की भावना नहीं थी.
When Krishna went to the city of Vidarbha to kidnap Rukmini,
जब भगवान कृष्ण विदर्भ देश में गए रुक्मिणी का हरण करने के लिए,
many kings were assembled.
बहुत सारे राजा वहाँ पर एकत्रित थे.
There was Rukma, Shishupal, and so many others.
Rukma, Shishupal इत्यादि.
They saw your transcendental eternal form with their own eyes.
उन्होंने आपके दिव्य स्वरूप को अपने आँखों से देखा.
But they felt no happiness.
लेकिन उनको आनंद का अनुभव नहीं हुआ.
Rather, they were all destroyed.
बल्कि उनका सर्वनाश हो गया.
Because they had no devotion.
क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं.
Because they had no desire to serve you with love.
क्योंकि उनके अंदर प्रेम से सेवा करने की भावना नहीं थी.
Long ago, when the earth was submerged in the Garbhodak ocean.
बहुत समय पहले जब धरती गर्भोदर सागर में गिर पड़ी थी.
You appeared in your transcendental form of Varahadev.
आप अपने दिव्य वराहदेव के रूप में प्रकट हुए.
Every limb of your body was the personification of yajna.
आपके शरीर का हर एक अंग जो है यज्ञ का मूर्तिमान स्वरूप था.
With your beautiful tusks, you lifted the earth.
अपने सुंदर दांतों से आपने धरती को ऊपर उठाया.
Rama, Shiva, and all the devatas were worshipping you with great devotion.
ब्रह्मा, शिव और सारे देवता बड़े भक्ति से आपकी आराधना कर रहे थे.
The son of Kashyapa and Diti, Hiranyaksha. He saw for so many long hours that beautiful form right with his eyes.
और हिरण्याक्ष ने इसी सुंदर रूप को अपने आंखों से देखा.
But he felt no happiness.
लेकिन उसको कुछ आनंद का अनुभव नहीं हुआ.
There was no bliss that was awakened in his heart because he had no appreciation of devotional service to you.
उनके हृदय में कुछ आनंद नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर कोई भक्ति की भावना नहीं थी.
Then he was destroyed.
और उसका नाश हो गया.
And then his brother.
और फिर उनके भाई.
Hiranyakashipu.
हिरण्यकशिपु.
He saw the most mysterious and secret form of Narahari.
उसने भगवान का बहुत द्विय रूप नरहरि का दर्शन किया.
That form of Narasimhadev who has the goddess of fortune residing upon his chest.
भगवान का वो रूप जब वो लक्ष्मी देवी के वक्ष स्थल पर मौजूद हैं,
he was gazing upon him.
वो उनका अवलोकन कर रहे थे.
But there was no bliss in his heart.
लेकिन उनके हृदय में कुछ आनंद नहीं था.
There was envy and anger.
उनके हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भावना थी.
Because he had no appreciation for humility, devotion, and service.
क्योंकि उनके अंदर नम्रता और सेवा की भावना बिल्कुल नहीं थी.
My Lord, Mukunda prayed. Similarly, I have no devotion.
मुकुंद ने प्रार्थना की है, भगवान इसी तरीके से मेरे अंदर भी कोई भक्ति भावना नहीं है.
I have no true desire to serve you.
मेरे अंदर कोई सेवा करने की सच्ची भावना नहीं है.
I'm sinful and fallen. And it is true, my body, my mind, my words, my very life is more useless than a pile of ashes.
मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण जो है राख के ढेर से भी ज्यादा बेकार है.
But still, by your causeless mercy, I'm experiencing bliss in my heart when I see you.
फिर भी आपकी अहैतुकी कृपा से आपको दर्शन करने के बाद मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है.
What was the qualifications of Kubja?
कुब्जा की क्या योग्यता थी?
She was just an ordinary, illiterate, hunchback woman.
वो एक साधारण जो है कुबड़ी स्त्री थी.
But because she had the desire to serve you with love, she was able to see you in ecstasy.
लेकिन क्योंकि उसके अंदर सेवा भावना थी, इसलिए वो बड़े आनंद से आपका दर्शन कर.
The yajnapatnis, the wives of the brahmins, the women of Mathura. What was their qualification? Ordinary women, but because they wanted to serve you, because they had devotion. You revealed the ecstasy of your form.
ब्राह्मण की पत्नियां मथुरा की स्त्रियां हैं, उनकी क्या योग्यता थी? लेकिन क्योंकि उनके अंदर सेवा भावना थी, वो आपका दर्शन कर पाए थे.
And then there was that simple garment maker.
और फिर वो सरल माली था.
In Mathura, he gave you the best garland in his shop.
उसने अपने दुकान से सबसे सुंदर फूल माला अर्पण की.
And then he decorated all of your friends, Balaram and the Gopas, with the nicest flower garlands he had.
और उन्हें बलराम और दूसरे गोपकुमारों को अच्छे से अच्छे सुंदर फूलों से सज्जित किया.
He asked no price. He simply wanted to satisfy you with love.
उसने कोई कीमत नहीं मांगी, वो सिर्फ प्रेम से आपको संतुष्ट करना चाहता था.
He experienced the eternal bliss of the soul by seeing you.
आपका दर्शन करने से उनको आत्मा का असली आनंद का अनुभव हुआ.
All his desires were fulfilled in this life, and you gave him the benediction that as soon as he leaves this body, he will return to Vaikuntha.
उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई और आपने आशीर्वाद दे के शरीर छोड़ने के बाद वापस वैकुंठ पहुंचेंगे.
But at the same time, Kamsa saw you.
लेकिन उसी समय कंस ने भी आपके दर्शन किए.
But he wasn't happy at all. He was miserable.
वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, बल्कि बहुत दुखी थे.
Because he did not have the humble spirit of devotional service.
क्योंकि उनके अंदर भक्ति की नम्र भावना नहीं थी.
Every day we come before the deity.
हर रोज हम भगवान के विग्रह के सामने आते हैं.
In the temple.
मंदिर में.
Some of you have deities in your homes.
आप में से कई के घर में भी मूर्तियां हैं.
To the degree we have the spirit of humility and devotion, the actual desire to serve the Lord exclusively in our life, to that degree you will experience the bliss of seeing the Lord.
जितना हमारे अंदर नम्रता भक्ति की भावना है, उतना ही आपको दर्शन करने पर आनंद का अनुभव होगा.
The holy name is a murti of the Lord in sound.
जो पवित्र नाम है वो भगवान के शब्द ध्वनि का विग्रह है.
Rupa Goswami explains what he experiences when he chants the name of Krishna.
Rupa Goswami बताते हैं कि उनको क्या अनुभव होता है जब वो भगवान का नाम जप करते हैं.
I do not know how much nectar these two syllables Krishna have produced.
मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा आनंद अमृत इस दो अक्षर कृष्णा में है.
When the holy name of Krishna dances on my tongue, I desire many, many, many tongues to taste that nectar.
जब भगवान का नाम मेरी जीवा पर नृत्य करता है, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत सारे जीवाएं हों.
Do we have this experience?
क्या हमको ये अनुभव होता है?
We're chanting, thinking, when will my rounds be done so I can talk about something else? Degree we are offensive in our chanting.
लेकिन जितना ज्यादा हम अपराधी हैं अपने नाम जप में.
To the degree we still serve our false ego.
जितना हम अपने मिथ्या अभिमान की सेवा कर रहे हैं.
And we have not developed a truly and genuinely humble service attitude to the Lord, to his devotees, and to every living being.
और जितना हमने सेवा की भावना नहीं विकसित की है भगवान और सब भक्त और सारे जीवात्माओं के प्रति.
To that degree, we cannot taste the sweetness of the holy name. We cannot see the beauty of his form.
उतना ही हम पवित्र नाम का आस्वादन नहीं कर सकते, न ही उनके रूप का अवलोकन कर पाते हैं.
Mukunda Dutt continued his prayers.
मुकुंद दत्त ने अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखा.
He explained that Ananta Shesha,
वो कहने लगे कि अनंत
ही इज होल्डिंग द यूनिवर्सेस ऑन द हुड्स
ऑफ हिज हेड
वो अपने फणों के ऊपर ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं
बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डिजायर टू सर्व यू He chants your holy names with such ecstasy he doesn't even know that there's universes on his hands.
Lekin wo aapke naam mein itne rat rehte hain ki unko pata nahi chalta ki brahmand unke sir ke upar dharan kiya.
Because Lord Shiva is serving you with such love, therefore just by hearing his name one invokes all auspiciousness in their life.
Kyunki Shiv ji aapki seva mein rat hain isliye unka naam smaran karte hi vyakti ka jeevan mangalmay ho jata hai.
Because of Narada Muni's devotional service to you He is celebrated all over the world as one who can give bhakti.
Narad Muni ki aapke prati bhakti ke karan puri duniya mein wo prasiddh hain jo dusron ko bhakti pradan karte hain.
Veda Vyas, he wrote the four Vedas.
Veda Vyas ne char Vedas likhe.
Mahabharat, the Puranas,
aur Puran,
Itihas, Brahma Sutra,
aur Brahma Sutra.
But he still was not satisfied.
Lekin phir bhi wo santusht nahi the.
But Narad Muni. To write the Srimad Bhagavatam, a scripture that exclusively deals with pure devotional service, when he glorified bhakti, then he was fully satisfied.
In the Narada Muni ne unhe shiksha di ki aap Srimad Bhagavat likhiye jo ki bhakti ke bare mein hai, tab ve purna rup se santusht ho gaye.
But my Lord, Mukunda continued, I am lower than an insignificant worm.
लेकिन मैं जो है एक तुच्छ कीड़े के लिए गिरा हूँ ऐसा मुकुंद दत्त
कहने आई हैव नो डिवोशन
क्योंकि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है
माय लाइफ इज वेस्टेड
मेरा जीवन बेकार है
बट स्टिल बाय योर मर्सी आई एम फीलिंग हैप्पीनेस इन माय हार्ट अपॉन सीइंग योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म
फिर भी आपकी कृपा से आपके दिव्य रूप को देखते हुए मुझे आनंद अनुभव हो रहा
है देन मुकुंद दत्त बिगन टू वीप
और फिर मुकुंद दत्त रोने लगे
ही रेज्ड हिज आर्म्स चैंटिंग द होली नेम्स वेरी लाउडली
सारे भक्त जो है
रो रहे थे लॉर्ड चैतन्य वाज वेरी एंबैरस्ड
चैतन्य महाप्रभु थोड़े से हिचकिचाने लगे
ही सेड मुकुंद यू आर द बेस्ट डिवोटी
यानी कि मुकुंद आप सर्वोत्तम भक्त
हैं यू हैव सच डिवोशन दैट एवरीवन इज इंस्पायर्ड
आपके अंदर ऐसी भक्ति है कि सब लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो रही है
बट एवरीथिंग यू स्पोक इज ट्रू
लेकिन जो भी आपने कहा
In fact, I put those words on your tongue to instruct the world.
बल्कि मैंने उन शब्दों को आपके जीवन पर रखा है दुनिया को शिक्षा प्रदान करने के लिए.
That without devotion, nothing pleases the Lord.
कि बिना भक्ति के कोई भी चीज भगवान को आनंद नहीं देती.
In my previous incarnation of Lord Krishna.
इससे मेरे पहले वाले अवतार कृष्ण के रूप में.
I met that washerman in Mathura.
मैं मथुरा के धोबी से मिला था
He saw me face to face.
उसने मेरे को साक्षात दर्शन
I revealed my darshan to him.
मैंने अपना दर्शन को प्रकट किया
I even asked him to do something for me.
मैंने उनको मेरे लिए सेवा करने के लिए भी कहा
But because of his association with Kamsa, he rejected my offer and blasphemed me.
लेकिन कंस के साथ तंग होने के कारण उन्होंने मेरी सेवा नहीं की और मेरी निंदा करने लगे
And with my hand, I took off his head.
लेकिन अपने हाथों से मैंने उसके सिर को अलग कर दिया
Krishna is the original karate champion.
Krishna, mool karate champion.
He touched him in his head cage.
बस पंच करते ही सिर अलग हो गया.
The Mahaprabhu explained that this washerman, from millions of births, he performed tapasya and pious activities just to get my darshan. The fruit of all those millions of births of pious activities, sacrifices and austerities came before him, my darshan. But because of his association with an envious person like Kamsa, he had no devotion, he had no love, he had no desire to serve.
क्योंकि वह कम से ऐसे व्यक्ति का संग कर रहा था उसके अंदर कोई प्रेम और सेवा की भावना बिल्कुल नहीं थी
Therefore he felt no happiness in his heart.
इसलिए उसको कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ हृदय में
Those who don't have devotion, they hurt me.
जिनके अंदर भक्ति भावना नहीं है वो मेरा अपराध करते हैं
एंड द पेन इन माय हार्ट prevents them from feeling any pleasure even when they see me with their own eyes
aur jo mere hriday mein jab dard hota hai to mera darshan karne ke baad bhi unko kuch anand ka anubhav nahi hota
mukunda dat you are so dear to me
mukunda dat tu mere ko ati priya ho
today I am going to give you a benediction
aaj main aapko ek aashirwad dene wala hu
the benediction I give you is
main aapko ye aashirwad dene wala hu
that whatever you say the holy names and glories of Krishna and all the devotees hearts will melt in bliss
jab bhi aap bhagwan krishna ke naam ka kirtan karoge sabke bhakti hriday pighal jayenge anand se
I give you the benediction that you will always be most dear to my heart
main to aashirwad deta hu ki aap mere hriday ko bahut priya hoge
and as you are dear to me you will be dear most to all the circle of Vaishnavas
और जैसे आप मेरे को प्रिय है सारे वैष्णव संघ को भी प्रिय होगे
वी शुड अंडरस्टैंड